नहीं समझ पाते कि भगवान किस उद्देश्य से रथ पर ऐसी लीला कर रहे हैं। और जब हम कुछ इन्हीं लीलाओं को जब किसी संत महात्मा शुद्ध विशुद्ध भगवान के भक्त अथवा नित्य सिद्ध बनकर यदि कृपा करके हम लोगों को कुछ भगवान जगन्नाथ जी के हृदय की कुछ भावनाओं को यदि हमारे को बताएं, तो ही हम लोगों के हृदय में जगन्नाथ जी की इस लीला का कुछ महत्व का कुछ अनुभव कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर अपने श्री गुरुदेव महाराज के चरण कमलों में नमन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि अभी अभी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा उत्सव हुआ जगन्नाथपुरी में, हमारे को हम सब को कुछ जगन्नाथ जी के विषय में कुछ अवगत कराएं, अपने हृदय के जगन्नाथ जी के सुंदर दर्शनों के अनुभव को अपनी शब्दों के द्वारा हमारे कानों में डालकर हमारी उस रस का अनुभव कराएं। सब मिलकर हम लोग गुरुदेव के चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं।
ज्ञान निरंभस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महामदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवद्विषये गुरवे गौरचन्द्राय रामकाली कलाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय करभक्ताय सर्वप्रथम मैं अपने परमाराधना नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में तत्पश्चात उपस्थित सज्जन भक्तगण और वैष्णवी आजकल जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा चल रही होगी, लाखों लोग 40-50 से अभी लाख लोग विश्व के विभिन्न स्थानों से वहाँ पर उपस्थित होंगे और रथ यात्रा से लेकर के आज अंतिम दिन है और रथ यात्रा पूरी करके के तब लौटेंगे। ये रथ यात्रा आज से नहीं सतयुग के प्रारंभ से है। मध्य भारत में कोई एक राजा थे, उनका नाम इंद्रद्युम्न था, बड़े धार्मिक राजा थे। एक दिन कुछ तीर्थ करने वाले कुछ वैष्णव लोग उनके राजधानी में आए। राजा ने उनका बड़ा आदर किया, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हम नीलाचल में नील माधव का दर्शन करके आ रहे हैं। वहाँ जो लोग जाते हैं मरने पर चतुर्भुज रूप धारण कर लेते हैं और सीधे बैकुंठ धाम में जाते हैं। पूछा जी किधर हैं? उन्होंने बतलाया जी समुद्र के किनारे और ये कह करके चले। राजा ने अपने मंत्री के लड़कों को पुरोहित के लड़कों को भेजा, नील माधव कहाँ है? समुद्र के किनारे पता लगाओ। अंत में उनके पुरोहित का लड़का किसी प्रकार से पता लगा करके आया। नील माधव एक पर्वत के ऊपर मैंने समुद्र के किनारे बहुत सुंदर वहाँ एक पेड़ की डाल पर तालाब के ऊपर में एक पक्षी कौवा बैठा था और वो ऊँघ रहा और उठते उठते वो गिर पड़ा पानी में और वहाँ से चतुर्भुज रूप धारण करके चतुर्भुज में गरुड़ के पीठ पर बैठ करके चला। अब उनका पुरोहित का लड़का जब पता लगा करके आया कि वहाँ पर है तो राजा अपने सैन्य सेना के साथ अपनी पत्नी पुत्र सबको लेकर के नीलमाधव का दर्शन करने के लिए चले। जब वहाँ पर पहुँचे तो देखा सब बालू से समुद्र के बालू से सब कुछ थक गया, कहीं पर्वत का ही पता नहीं। तो समुद्र के किनारे आकर के बैठ गए अनशन व्रत पर और फिर क्या नीलमाधव का दर्शन करना चाहते। ब्रह्मा जी उनको लेकर के वैकुंठ में गए और नीलमाधव का दर्शन किया, प्रार्थना के लिए आप जगत में चलिए, अब मैं तीन रूप में जाऊंगा, जाओ जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा। आकर के उसके पहले ही मंदिर बनाया था, तीन लाल आल लाल लाल वृक्षों की धड़े मोटी मोटी बहते हुए आई और बड़े मुश्किल से राजा ने बड़ी मुश्किल से रानी के साथ में उसको नीचे उतारा और उनकी कहा कि यहाँ पर कोई बनाए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। एक ब्राह्मण आया वृद्ध अजय मैं बना, किंतु हमको कोई रोकना नहीं, मैं चुपचाप एक घर में बंद रह करके ठाकुर जी का विग्रह बनाऊंगा, कोई खोलना मत 15 दिन तक, 15 दिन में पूरा पकड़ के बंद हो गया और वो भीतर ही काम करने लगा। वो कोई और नहीं था, स्वयं कृष्ण ही थे। वृद्ध ब्राह्मण आया, कुछ दिन तक ठक ठक आवाज हुई, इसके बाद में वो भी बंद हो गई। रानी ने सोचा जैसे वो भीतर ही भीतर भर गया, कोई शब्द नहीं कुछ नहीं, जल्दी खोलो। राजा कहने लगा ठाकुर जाओ 15 दिन की बात कहा। रानी उससे ही मानी नहीं, जल्दी खोल नहीं तो ब्रह्महत्या का पाप लगेगा, ये मर जाएगा। तो उन्होंने 10-11 दिन के बाद ही में खोल दिया तो वो हंस करके जो शिल्पी था वो चला गया। यहीं पर प्रभु का शादी हुई, तब से उसी को ही वहाँ पर पूजा होती है और वर्ष में एक बार वो द्वारकापुरी से, द्वारकापुरी जगन्नाथ है, जगन्नाथ से आते हैं वृंदावन, उनको वृंदावन की बड़ी याद आती है, अपने सखाओं की माता पिता की और गोपियों की बड़ी याद आती है, श्रीमती राधिका की याद आती है। इसलिए लक्ष्मी जी से बतलाते नहीं हैं, कहते हैं कि मैं मेरा मन डूब गया है, मैं 2-4 दिन जरा मन में घूम करके आ जाता हूँ। और सुभद्रा जी को बलदेव को लेकर के जाते हैं कि वहाँ ब्रज में जा कर के एकदम मत हो जाते हैं गोपियों और ब्रज के साथ में। तो 5 दिन के बाद में लक्ष्मी जी उनको खुद विमला देवी आती है खोजने के लिए और फिर रथ को तोड़ने लगती हैं। महाप्रभु के जो गण हैं जगन्नाथ जी के उनको मारती हैं पीटती हैं और प्रतिज्ञा कराती है कि मैं जल्दी से निकल कर भेजूँ। इस प्रकार से ये वहाँ की लीला ये प्रतिवर्ष होती थी। रथ को हाथी खींचते थे, उड़ीसा के सब लोग आते थे, किंतु जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उसका भाव बदल गया, भाव बदल गया। वो भाव क्या, बृहद भगवतांश इत्यादि ग्रंथों में लिखा है। जो एक समय में कृष्ण बलदेव जी राजसभा में बैठे थे और वहां सुभद्रा जी रानियों के साथ में बैठे थे। रानियों ने रोहिणी जी से बलदेव जी की मैया से पूछा कि कृष्ण वृंदावन को भूल नहीं पाते, गोपियों को भूल नहीं पाते हैं, रात में भी रोते 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 राधे राधे विषाद के ललते बढ़ते हैं, ब्रज की क्या विशेषता है ये बताओ, क्यों कृष्ण नहीं भूल पाते। हम सब 16,108 रानियां हैं, हम उनके मन को पूरा नहीं कर पाते और उन लोगों में क्या है, यही बतला रही थी सुभद्रा जी को। कहा तुम यहीं पर पहाड़े पर बैठो, कृष्ण बलदेव जी आए तो पिता बताने देना, किसी को मता नहीं। और वो कथा की कहने लगी। इतने दिन कृष्ण बलदेव रह नहीं सके सभा में, जहां पर उनकी कथा होती है जरूर पहुंच जाते, इसलिए कृष्ण बलदेव वहां पर आए। सुभद्रा जी ने कहा जरूर को भीतर में जाने का आदेश नहीं है, भैया ने आदेश नहीं दिया है, यही पर खड़े हो। वहीं से सुनते 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 कृष्ण का अंग गल गया, बलदेव जी का भी अंग गल गया और सुभद्रा जी का भी अंग गल गया। सुनते उनका चित्त द्रवित ऐसा हो गया कि एकदम पानी पानी जैसा हो गया, और केवल वैसा ही जैसा भी मूर्ति देखते हैं ठीक उसी रूप में हो गया, हाथ पैर सब कुछ गया। क्यों यहाँ तक रहा? नारद जी आए बोले मैं आपसे यही पर मांगता हूँ कि ये मूर्ति जगत में कहीं हो, ये संसार के लोग दर्शन करके उनका कल्याण, भगवान की यही और भक्तों की इच्छा होती है। हम लोग अनादि काल से बद्ध हैं, ये पहला जन्म नहीं है, कभी मांस मछली सुपर ऊपर गढ़े हुए, कभी देवता हुए, बड़ी मुश्किल से भगवान ने ये जन्म दिया। वो मूर्ख हैं जो भोगों में इस जीवन को लगा देते हैं, उनको भूल जाते हैं, रुपया कमाने के लिए जितना चेष्टा करते हैं भगवान के लिए नहीं करते, उनके नाम में हम नाम ही देते हैं तो उसमें नाम में उसी नहीं बड़े भागा है, फिर दूसरे दूसरे जन्म में गए। इसलिए आप लोग ऐसा समझ करके अनासक्त रूप में संसार में रहें, अपना अपना कर्तव्य करें, किंतु चित्त कृष्ण के चरणों में, राधा जी के चरणों में, यही रथ यात्रा का भी उद्देश्य है, भागवत का यही उद्देश्य है, चैतन्य चरितामृत का उद्देश्य है। भगवान के जितने अवतार आते हैं, भक्त लोग आते हैं, उनका उद्देश्य यही, हम लोग भगवान के नित्य दास हैं, उनको भूल करके हमारी दुर्दशा, जन्म मरण होता है, वृद्ध होते हैं, खाली हाथ चले जाते हैं, एक पैसा भी नहीं जाता, पति पुत्र भाई बंधु पति उनकी इसको समझ रखना, ये काम नहीं देंगे, इसलिए भगवान का भजन ही एकमात्र काम देगा। तो चैतन्य महाप्रभु आए, इस भाव को ले आए, जगन्नाथपुरी का मंदिर है वो द्वारका है या कुरुक्षेत्र है, वहां पर कृष्ण ब्रज की याद आती है, कुरुक्षेत्र में ग्रहण लगा था, संग्रास रूप से ग्रहण, वो आए और वो गोपियों को भी खबर मिली कि कृष्ण आ रहे हैं निकट में कुरुक्षेत्र में, इसलिए नंद बाबा यशोदा मैया सारी गोपियां राधिका चंद्रावली ललिता चापा सब छपरों पर गाड़ियों पर बैलगाड़ी पर बैठ कर वहां थे। कृष्ण उस समय में दान में ग्रहण में दान कर चुके थे और स्नान भी कर चुके थे और विषम पितामह कुंती पांचों पांडव नारद इत्यादि हजारों ऋषियों के साथ में बातचीत कर रहे थे। उनको खबर मिली नंद बाबा यशोदा मैया और गोपियां एकदम यहाँ निकट में आ गए। सुनते ही सबसे बातचीत करना सबको भूल करके रोके हुए दौड़े कृष्ण और बोले, गाड़ियां बंद हो गई चल रहा। यशोदा मैया उसमें से निकली, नंद बाबा निकले, अब तक कृष्ण रोते रोते मैया मैया एकदम यशोदा मैया की गोदी में बैठ गए और बलदेव जी नंद बाबा के चरणों के। देवी ने देखा हमको आज तक तो मैया कहा नहीं और ये समझता कि यशोदा मेरी मैया है। उन्होंने चतुराई से कहा, ओ यशोदा जी, नंद बाबा आप धन्य हैं, मेरा पुत्र कंस के डर से हम लोगों ने भेज दिया था आपके घर में और आप लोगों ने आपकी पुत्री के समान इसका पालन किया। समझ गए ये कृष्ण को बताना चाहती हैं कि देवकी तुम्हारी मैया है, देव मैं तुम्हारी मैया हूँ, बस देव तुम्हारे पिता है और कृष्ण तो उसी में रहते हैं, बाल होता कि उसके साथ में चले जाएंगे। तो रोहिणी जी ने कहा क्योंकि भैया आप और सब अतिथि आए हैं उनको देखिए और इसी प्रकार से यशोदा मैया और बाबा से इनको मिल ले। यशोदा जी देख रही थी हमसे तो इनका मिलन हो गया, आंसू भी अब देखा कि गोपियां जो आई हैं राधा जी किसी प्रकार से वहां से तो धारण करके आई हैं, किंतु अब निकट में रहने से कृष्ण से बातचीत नहीं होगी, प्राणों को आप छोड़ दें। इसलिए प्रेम किसको करते हैं, यदि प्रेम सीखना हो तो गोपियों में जैसा पृथ्वी भर में कोई प्रेम नहीं है, किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं था। हम स्त्रियों का पति से कुछ स्वार्थ होता है, यदि उस स्वार्थ को नहीं पूरा करते तो पश्चात देश में तलाक देकर के दूसरे पति के पास जाते और ये स्त्रियां भी वैसे पति वैसे। तो गोपियों का निस्वार्थ प्रेम ऐसा कृष्ण उनको ना तो घर दिया ना कपड़े दिए पहनने के लिए न कोई एक पैसा उनके लिए खर्च किया, किंतु कैसा निस्वार्थमय प्रेम गोपियों का। इसलिए कृष्ण स्वयं कहते हैं मैं तुम्हारे ऋण से उदृढ़ नहीं हो सकता। तुम लोगों ने जिस प्रकार से पति पुत्र भाई बंधु धर्म मर्यादा लज्जा सब कुछ हमारे लिए छोड़, जगत में ऐसा कोई आदर्श नहीं है, इसलिए तुम्हारा ऋण कैसे दिखा। इस तरह से कहा रहा था
यशोदा मैंने देखा,
यशोदा भैया देखा इतना प्रेम है अब तो मर जाए। उन्होंने किसी प्रकार से बहाना बना करके बलदेव को भी साथ ले करके और सब जो लोग आए हुए थे उनसे ये मिलने के लिए चले, तब मुखिया वहां पर आए और उन्होंने बहुत दिनों के बाद में इतने दिनों के बाद 80-90 वर्ष के बाद गोपियां कुरुक्षेत्र में कृष्ण से मिल रही और आंखों को जो बनाया उस ब्रह्मा को अभिशाप दे रही है। कृष्ण को देखने के लिए आंख दी वो भी दो और उस पर पत्नी बना जो बार बार की थी और उसमें भी आंसू दे दिए, आंसू भर जाता है हम लोग देख नहीं पाते। इस प्रकार से आंखों से ही कृष्ण को अपने हृदय में लेकर आलिंगन किया, तो ब्रह्म इत्यादि देवताओं के युगेंद्र के लिए भी ऐसा संभव नहीं। कृष्ण ने उनको कुछ समझाया, देखो मैं कहां हूं, मैं सर्वत्र हूं, घट घट में निवास करता हूं, ऐसा पृथ्वी का कोई कण नहीं है जहां पर भी मैं नहीं, इसलिए तुम्हारा मुझसे वियोग नहीं, तुम ध्यान करने से इनके प्राप्त कर लो, और विशेष करके तुम्हारे अंदर में स्नेह है, जिसको भक्ति हो गया उसका जीवन सफल हो गया, और उसमें भी भक्ति के बाद में प्रेम स्नेह प्रणय राग आपको है, इसलिए तुम लोगों को है ये स्नेह बहुत जल्दी ही तय कर दीजिए। गोपिया सुन करके उसको रुष्ट हो गई और बोल रही आहुष्यते नवीन नाथ पदार बिंदम योगेश्वरी रवि कहने लगी कि कृष्ण आप कैसे बातें करते हैं, क्रोध कर मान करके जो ईश्वर ने जिनको ध्यान में कर लेते हैं और वो भी ध्यान में नहीं जाते उनके, और उन चरणों को हम अपने मस्तक्षम पर रखते हैं एकदम साक्षात रूप में, और आप हमारे वशीभूत वृत्त में रहते थे और उसके लिए अब हम ध्यान करेंगे आपका, योगेंद्र लोग ध्यान करेंगे, क्या आप समझते हैं कि हम लोग संसार कूप में पड़े हुए हैं, आपके चरणों का ध्यान करें, हम तो आपको भूल जाना चाहते, जैसे हमको भूल करके आप 16,108 के साथ में आप शादी कर हम लोगों को सब भूल चुके हैं, बड़े निष्ठु निर्दयी और छलिया, कहा कि परसों आएंगे, कल नहीं तो परसों आएंगे, अभी तक लौटेंगे, एकदम विलाप करते, तब वो कहती है कि देखो यदि तुम हमको प्रसन्न करना चाहते हो आने हृदय मन मोर मन वृंदावन, हम लोगों का हृदय और वृंदावन एक नहीं है, हमारा मन और वृंदावन एक है, आप यदि हमारे मन में उदित होना चाहते हैं तो हमारा मन तो वृंदावन है, वृंदावन में प्रधान यहां पर हाथी घोड़े हैं, सेनाएं हैं, बहुत से मंत्रिमंडल है, ये सब पितामह इत्यादि लोग हैं, यहां पर वो प्रेम संभव नहीं है, पहले हम वृंदावन में जमुना के किनारे बंसीपट में अकेले मिलते थे, वहां अपने राष्ट्रीय आपको याद है राष्ट्रीय आपके साथ में हम नृत्य करती थी गान करती थी और आप साधु साधु करते थे, उन दिनों को भूल गए, इसलिए आप यदि कृपा करते हैं तो अपने चरण वृंदावन में ले चलिए, भगवान से आपसे मिले, चैतन्य महाप्रभु इसी भाव में आविष्ट होकर के रथ को फेंकते थे, सात टोलियों में नृत्य करते थे और टोलियों के साथ में कीर्तन करते थे, एक ही साथ सात टोलियों में यहां वहां वहां सब जगह नृत्य कर रहे हैं, महाराज प्रताप रुद्र ने देखा साथ में भट्टाचार्य, उनका जो तुम्हारे ऊपर में बड़ी कृपा है जो देख रहे हो, यह स्वयं भगवान कृष्ण है। अर्थात उस समय चैतन्य महाप्रभु के आंखों से इतना आंसू निकलता था जो पास वाले लोग भीग जाते। तो महाप्रभु जब कि रथ के पीछे चलते थे तो रथ खड़ा हो जाता था, और जब आगे पीछे चलते हुए बढ़ते थे रथ के आगे तो रथ चले धीरे धीरे। तो रथ भी देखता था जगन्नाथ जी अब चल रहे हैं आगे, राधिका जी आगे जा रही हैं। महाप्रभु राधिका भाव में आविष्ट थे, इसलिए उन्होंने देखा जैसे ये तो राधिका जी जा रही है आगे तो आगे, और यदि वो पीछे हो जाते तो हजार हाथियां भी मिलकर के उसको खेच नहीं सकती। ऐसा हुआ था जगन्नाथ जी के प्रताप रुद्र के समय, हाथियां उसको भी चलाया नहीं चला। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु अपने संगी और साथियों को लेकर के रथ यात्रा करते थे बड़े भाव के साथ। उसके पहले गुंडीचा मंदिर का, जहां पर के जगन्नाथ जी वृंदावन में जाते हैं, वहां का मंदिर राजा अपने कर्मचारियों के द्वारा साफ करा था। चैतन्य महाप्रभु को लीला अपने पास ले ली और अपने साथियों के साथ में होते थे, अपने पुत्तलिये से माँजते थे और बतलाते थे देखो ठाकुर जी को कैसे बैठाना है। मंदिर में जैसे साफ सुथरा करके और कुछ नहीं आता, मंदिर में ठाकुर जी को बैठाना। हम लोगों के हृदय में मैल पड़ा पड़ा, क्या मैल है क्या? पहला तो ये मैल है कि हमने शरीर को ही मैं समझ लिया। मैं ये हमारा पति है, ये हमारा पुत्र है, ये मेरा घर है, ये मेरी संपत्ति है, ऐसा मान लिया। यही संसार के सब दुखों का कारण है। जब तक देह में आसक्ति मैं और मेरे ये नहीं जाए, कृष्ण ही एकमात्र मेरे हैं और मैं आत्मा उनका नित्य सेवक या सेविका हूं, यह जब भाव आएगा तब कृष्ण बैठेंगे। अभी तो लाखों प्रकार की आकांक्षा है, हमें सुंदर बेटा हो जाए। महाराज अभी भक्ति हमको पीछे, पहले तो बेटा, जिसको बेटा है हमारा बिजनेस चल रहा है। महाराज जी आप कृपा कीजिए कि हमको आप बिजनेस चले। जिसको बिजनेस भी चल रहा है उसको बुढ़ापा कर लिया रोग आ रहा है, महाराज हमारा अंग इतने रोग से तंग है। संसार में कोई भी सुखी नहीं है, अभी नवयुवक और युवती की अवस्था बड़े रोग से यौन से चलते हैं, घमंड से चलते। हमारे समान कोई सुंदरी नहीं है, मैं सब परम सुंदर, मैं सबसे बड़ा धनी, ये अभिमान सब है। और बूढ़ा आने पर ब्यूटी चली जाती है, गांव सिकुड़ जाते हैं, बुद्धि भी नहीं रहती है, शरीर एकदम कमजोर हो जाता है। दूसरों पे भरोसा, जैसे हम दूसरों के ऊपर हाथ रख करके चलते हैं वैसे चलना पड़ेगा। याद रखो ये भी आएगा, बुढ़ापा आएगी कोई रोक नहीं सकता, पढ़ना भी नहीं रोक सकता, और एक दिन खाली हाथ पसारी जाएगा। इसलिए धन में संपत्ति में ममता मत करो, जितना सुख दुख जो है उसको संतोष के साथ में हंसते हुए भोगो, और अपना कर्तव्य समझ करके पति के प्रति, भाई के प्रति, माता पिता के प्रति करो। आसक्त कहीं भी मत, सारी आसक्ति विनोद बटोर करके एक साथ गुरु के चरणों में दे दो, और गुरु उस आसक्ति को राधा कृष्ण के चरणों में, महाप्रभु के चरणों में। इसलिए इस जीवन का प्रथम और एकमात्र कर्तव्य है, बस दूसरा नहीं, किसी तरह से भी जीवन का निर्वाह हो जाए। अधिक धन संपत्ति होगी तो अमेरिकन जैसे लोगों की, यूरोपियन जैसे लोगों की हो जाएगी स्वर्ग में। वो सब स्वर्ग है, वहां के लोगों को फुर्सत नहीं है। इतना आबाद रूप प्यार वहां है, हमने देखा है। सबसे पहले मत मदिरा पान करते हैं, वो मांस इत्यादि सब खाते हैं, उनको फुर्सत नहीं है भगवान की चिंता करने के लिए। भगवान काम की ठीक हुई, उनको चिंता नहीं है कि मैं शरीर नहीं मरूंगा, पूरा हो जाऊंगा कि भी इसलिए वैसा नहीं बनता। हम भारतीयों को घर में कहते हैं कि भोगों में मत करो, इस तरह से आप लोग भी याद रखें। और इस तरह से संसार से आसक्ति हटाकर भगवान के चरणों में देख करके भजन कीजिए, आपका जीवन सुखमय, शांति समय और भक्ति। यही मैं प्रार्थना करके तब तक समाप्त।